नमस्ते। प्रवचन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपकी सब लोगों की कई दृष्टिकोण से क्षमा याचना कर रहा हूं। पहले तो सबसे पहले कि जो कुछ मैं कहने वाला हूं उसको मैं खुद जीवन में बहुत कम अंशों से प्रयोग में कर सकता हूं, सो मैं खोखला हूं कि एक दो हफ्ते पहले यदि आपने आचार्य जी का प्रवचन सुना था तो उसमें आचार्य जी ने कहा था कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी वो नहीं है जिस वो पंडित है जिसने शास्त्र पढ़े हैं कई तर्क कर सकता है। ज्ञानी वो है जो ज्ञान को आचरण में प्रयोग करता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। दूसरी क्षमा याचना मैं करना चाहता हूं कि आचार्य जी के एब्सेंस में उनके जैसे शास्त्रों के अभ्यास मैंने नहीं किया है, तो यदि मैं आपकी अपेक्षा आपके समय का सदुपयोग मेरे कहने से मैं नहीं कर सकता हूं तो उसके लिए भी मुझे माफ करना। तो अंकित आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आचार्य जी को नमन करेंगे जो वो ये प्रार्थना हर प्रवचन के पहले करते हैं, जो है कि नमस्ते सते जगत कारणाया, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाया, नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाया, नमो ब्रह्मणे व्यापिने स्वास्थ्याय। नेक्स्ट वन प्लीज। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपत्रप्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। नेक्स्ट वन। भयानं भयं भीषणं भीषणानं गति प्राणिनं प्रवणं प्रवणानं महोच्छेपदं नियन्त्रत्वमेकं परेशं परं रक्षणं रक्षणानं। वयं त्वं समरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत साक्षी रूपं नमाम सदेकं निधनं निरालंबमीशं भवं बोधिपोतं शरण्यं व्रजाम। तो आओ थोड़ा आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लिखा है पाप से दूर रहो, पाप से नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, अब कहते हैं हेट द सिन बट नॉट द सिनर, लेकिन हिंदी में हम उसको ये नहीं कहेंगे कि पापी से नफरत मत करो लेकिन पाप से नफरत करो, क्योंकि हमारे मेरी समझ के अनुसार हम किसी से भी नफरत नहीं करते हैं, हम सब चीजों से प्यार करते हैं, पर हम किस कुछ चीजों से दूर रह सकते हैं। वो उसके उसको कहा है मैंने कि पाप से दूर रहो और पापी से नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको तीन उदाहरण दूंगा जिसका संबंध होगा आगे प्रवचन में, पर इसका संबंध इसके साथ भी है। तो सबसे पहला उदाहरण है कि यदि आपको मान लो कि $100,000 दिए गए और आपसे कहागा कि भाई यदि मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरे कुटुंब के अच्छे के लिए के आप पैसे खर्च करना, तो शायद विश्व के 80 से 25 प्रति लोग यही करेंगे कि यदि वो लिखा नहीं है या तो कोई साक्षी नहीं है, उसके बावजूद विश्व के 80 से 25 80-85%, माफ करना, हिंदी में बोलने का बहुत महावरानी में प्रयत्न कर रहा हूं, तो 85% लोग वो पैसे मेरे कुटुंब के अच्छे के लिए करेंगे। आप अपने मन से सवाल का जवाब देना, उसका कारण क्या है, मैं उसका जवाब आगे दूंगा। क्योंकि शेखर जी ने अपने प्रवचन में कहा कि हम ट्रस्टी हैं, जो इस प्रवचन देने से पहले मैंने आचार्य जी से भी सलाह ली थी कि क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे हिंदी में जो कहते हैं सन्यासी, तो न्यास क्या मतलब होता है, ट्रस्टी, और सन्यासी वो है जो अच्छा ट्रस्टी है। तो क्योंकि वो पैसे आपके नहीं है इसीलिए, और आप में मैंने विश्वास रखा है, तो उसीलिए आप वो पैसे मेरे परिवार के अच्छे के लिए ही खरीदेंगे। दूसरा उदाहरण मैं ये दूंगा कि आप अपने जीवन में देख लीजिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो आपके जो साथी थे, और एंड फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल विल कंसिडर, दे वर रफली ऑफ इक्वल इंटेलिजेंस एंड रफली इक्वली हार्ड वर्किंग, ठीक है ना सत्या जी? तो क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े थे, तो उसके बावजूद कोई बंदा, हम जिस तरह से समाज जिसको सक्सेस समझता है, तो कोई और आगे बढ़ा है, हमारे एक क्लासमेट है बी विथ ए बिलियनर, और कोई बंदे पीछे रह गए हैं कि जिनको यहां आने का अवसर नहीं मिला, बावजूद वो मेरे से भी बहुत बुद्धिमान है, शायद उनके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि मुझे यहां आने का मौका मिला। तो ये उदाहरण देने का सिर्फ मतलब यह है कि जीवन में इंटेलिजेंस और हार्डवर्क के अलावा कोई एक फैक्टर है, कोई उसको कर्म कहता है, कोई उसको लक कहता है, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी व्याख्या है वो उसे दे दीजिए। तीसरा और आखिरी उदाहरण है कि आप विश्व में कोई भी ऐसा विद्यालय बताइए, विद्यापीठ बताइए, कि जहां वो आपको गारंटी देंगे कि आप जब वहां से ग्रेजुएट होंगे तो आपको भी बिल गेट्स जैसे विचार आएंगे और आप भी उसकी तरह अधिक धनी हो जाएंगे। ऐसी कोई विद्यापीठ नहीं है। दूसरी तरह से इसी उदाहरण को दिया जाए कि यदि हम अपने मन को कहे कि मुझे मन में कोई भी बुरा विचार नहीं लाना है, हम कर सकते हैं? मेरे समझने के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं। यह कहने का मतलब यही है कि जो विचार आते हैं वो कहीं से आते हैं, हम उसको परमात्मा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो हमारे नहीं है। यदि हमारे होते तो हम ये दावे के साथ कह सकते हमें कोई बुरा विचार नहीं करना है, या हम कायम अच्छा विचार करेंगे, पर वो होता नहीं है। तो ये उदाहरण देने का ये मतलब है, और अभी मैं उसको पाप से संकलित करूंगा कि पापी के मन में भी जो विचार आते हैं वो ही भगवान ने दिए हैं, तो वो जो करता है तो हम उससे असहमत हो सकते हैं जो कार्य किया है, क्योंकि विचार ही कार्य में बदल सकता है, उसके बिना और कुछ नहीं। क्योंकि जब कोई प्रोफेसर क्लास में पढ़ाता है, वो सिखाता तो सबको एक ही चीज है, लेकिन हम लोग हमारी समझ के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो अलग अलग होता है। तो ये जो पाप से दूर रहो और पापी से नहीं, क्योंकि हर इंसान के विचार ऊपर वाले से ही आते हैं, तो हम जो गलत काम है उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो इसने जो किया है उससे हम नफरत नहीं कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक और भी व्याख्या दे दूं कि मेरी समझ के अनुसार पाप क्या है। पाप की कई व्याख्याएं कई जगहों पर दी गई है, मेरी समझ में वो एक बहुत सादी चीज है। वो है कि जब आपका दिल आपको कुछ कहने करने के लिए कहता है और यदि वो आप नहीं करते हैं तो वो पाप है। किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, खुद की ओर देखने की जरूरत है कि जो मेरे मन में विचार आता है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया विचार है, और मैं उसके मुताबिक अपना जीवन जीता हूं, यदि मैं नहीं जीता हूं तो मैंने पाप किया है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमने ऑलरेडी बात कर ली कि हमारे विचार प्रभु की ओर से आते हैं, ईश्वर की ओर से आते हैं। तो कई जगह पे कहा है कि हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम सिर्फ माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की इच्छा प्रकट होती है। इस ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग कुछ अभिमानी होते हैं, मैं भी बड़ा अभिमानी हूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मेहनत की है, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैंने ये किया है, इसके लिए मैं इसका अधिकारी हूं। लेकिन यदि हम ये मानते हैं कि यदि ईश्वर की इच्छा हमारे द्वारा प्रकट होती है, तो इससे हम में नम्रता आती है सबसे पहले। तो दूसरी चीज वो आती है अभयता, निडरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भाई जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं वो करता हूं और इससे आगे बढ़ता हूं। तो ये विचार मन में रखना बहुत जरूरी है हर पल पल में कि ईश्वर की इच्छा हमारे माध्यम के द्वारा प्रकट होती है और इसीलिए उसे हमें हमारे में नम्रता आती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि हमारे हर शास्त्र और पुराण में ईश्वर का वर्णन नेति नेति से कहा गया है। कहीं पर भी ये नहीं कहा ईश्वर क्या है, कहा है ईश्वर क्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि नोबडी नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ कि ईश्वर क्या है। हम अपनी समझ के अनुसार उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या है और उसके मुताबिक जीवन बिता सकते हैं, लेकिन हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर ये है। और ये भी बड़ी महत्व की चीज है और हम आगे बढ़ के देखेंगे इसमें क्या, क्योंकि ये जरूर है, पर ये विचार भी जरा ध्यान में रखा जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर क्या है? अभी मैंने आपसे कहा ईश्वर नेति नेति, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन सत्य क्या है? हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, सुनते हैं आचार्य जी को और सत्य की खोज में पड़े हैं। सत्य बहुत साधारण है, जैसे हमने पहले ही बात की कि जो आपका दिल जो कहता है वही सत्य है, क्योंकि आपकी समझ में वो आ गया है और आपका दिल आपसे कह रहा है। अच्छा, तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि जिस आर्य समाज के हॉल में आज हम बैठे हैं वो महर्षि स्वामी दयानंद जी, आपको सबको मालूम है कि शिवरात्रि की रात थी, उनके पिताजी बड़े ब्राह्मण थे, बड़े निष्ठा से पूजा करते थे और रात को जब उठ के स्वामी जी ने देखा कि चूहे शिवलिंग पे घूम रहे हैं तो उन्होंने सवाल किया, अरे ईश्वर ऐसा कैसा हो सकता है कि जो चूहे को भी दूर नहीं रख सकता है। तो उनके दिल में आवाज उठी कि सत्य क्या है, और उस सत्य के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने कई कष्ट सहे लेकिन किसी और को कष्ट नहीं दिया। उन्होंने खुद समझने का प्रयत्न किया कि जो उनको मालूम है क्या सत्य नहीं है, लेकिन सत्य क्या है वो जानने के लिए उन्होंने खुद की खोज की और उसमें आगे बढ़े। सो जैसे कि पहले आई थिंक इट्स द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, कि आर्य समाज का जो चौथा नियम है उसमें भी आज शेखर जी ने पहले बताया कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अच्छा, यदि हम इस नियम का पालन करते हैं तो सबसे पहले हमारे में नम्रता आती है कि हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं जानते हैं। दूसरा कि हमारी समझ में गलत फहमी हो सकती है और जब हमें यह समझ में आए तो हमें अपना ओपिनियन बदलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी, महर्षि स्वामी दयानंद का जो उदाहरण ले रहे हैं कि उनके पिताजी बड़े महान थे, उसके बावजूद उन्होंने उसको सवाल किया। इसी तरह हमें कभी भी अपनी आजादी छोड़नी नहीं चाहिए। किसी भी ग्रंथ, किसी भी बंदे को सवाल करने की हमें आजादी रहनी चाहिए। जब तक हमें समझ में नहीं आता है ये क्या है, तब तक हमें उससे सहमत होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि देर आर एज मेनी रिलीजन्स एज देर आर पीपल, सो देयरफॉर दोज हु आर कैथोलिक्स फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल बट दे डू। देर आर पीपल इन हिंदुइज्म, दे डू नो मैटर वॉट फेथ दे बिलोंग टू, जो उनकी समझ में आता है वो उसी तरह से करते हैं। सो देर आर एज मेनी रिलीजन्स एज देर आर पीपल, और उसको फॉलो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इस नियम को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसके साथ हम एक और बात कर लें कि यदि हम एडमिट करते हैं कि हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम नहीं है, तो हमें दूसरा का जो दूसरे बंदे का जो सत्य है उसको भी मान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शायद वो बंदा कुछ जानता है, उसकी मान्यता में उस सत्य का, एब्सोल्यूट ट्रूथ का कुछ अंश छिपा है जो हमें मालूम नहीं है। तो नाउ देयर इज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट कि कोई भी मान्यता किसी भी की भी हो, हमें ये नहीं कहना कि आप गलत हैं, नहीं, हम उससे सहमत नहीं है, लेकिन हमें उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि शायद उन्हें कुछ मालूम है जो हमें मालूम नहीं है। तो दिस ब्रिंग्स अबाउट टॉलरेंस। नाउ लेट्स गो टू उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं, यह हमने बात कर ली। तो इससे अहिंसा ऑटोमेटिकली का बेसिस बन जाता है कि क्योंकि किसी का सत्य हमसे अलग है, इसका मतलब ये नहीं हम उसके साथ जोर करेंगे या लड़ाई करेंगे और उसको बदलने का प्रयत्न करेंगे। और आगे बढ़ते हुए अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा क्या है, जंग क्या है, संघर्ष क्या है? लड़ाई झगड़ा और संघर्ष वही है जब हमारा सत्य किसी और के सत्य से बिल्कुल विपरीत है। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं कि जो लोग के पास पैसा नहीं है गरीब हैं, जो लोग अमीर हैं कायम उनके बीच में संघर्ष चलता है। कंपनी कई मुनाफा करती हैं, यूनियंस कहते हैं हमें उसमें पैसा दो। और सबसे बड़ा महावरा उदाहरण ये दे सकते हैं कि जब ब्रिटिश लोग भारत पर राज्य कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे यू हाफ इट नेकेड हाफ नेकेड इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू लिव, वी नीड टू टीच यू हाउ टू लिव, आवर क्राइस्ट हैज शोन अस द वे। और हम लोग कह रहे थे कि हमारी संस्कृति तो 5000 सालों से ज्यादा पुरानी है, हम जानते हैं जीवन कैसे जीना है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो संघर्ष था, जंग था, और आमतौर पर दुनिया के इतिहास में ये जंग कैसे मिटाया गया है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई करता है, जंग करता है और पुरवार करता है कि मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूं और तुझे वही करना है जो मैं ये कह रहा हूं। लेकिन इसका एक दूसरा भी रास्ता है और आगे चल के देखते हैं कि वो रास्ता क्या है। संघर्ष को, जंग को मिटाया कैसे जाए? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म। ये बहुत महत्व की चीज है कि जो कुछ भी करना है वो अहिंसा से करना है। तो जंग को अहिंसा से कैसे मिटाया जाए, तो एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। आप लोगों में से कितने बंदों ने द 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी है? आई थिंक क्वाइट ए फ्यू। ये हजारों साल पुरानी कहानी है। जैसे हमारे आचार्य जी कहते हैं कि एब्राहमिक रिलीजन जो जुडाइज्म है उसमें यह हुआ कि जब ज्यूज वर रूल्ड बाय द फेरोस और उनसे मुक्ति पाने के लिए जब मोजेस ने उनको लीड किया तो मानवी की कल्पना भी ना आए ऐसी घटनाएं बनी जैसे कि द सी पार्टेड, and the people could go through that, but it was a totally non-violent struggle. उसमें जूस लोग ने कोई हिंसा नहीं की. अब आज के जमाने में हम चलें, उसके बाद मुझे मालूम नहीं है और कहां पर अहिंसा का प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद आए महात्मा गांधी. हमारी भारतवर्ष की आजादी के लिए उन्होंने कई मूवमेंट चलाई, और जब से जो सबसे मशहूर उनकी मूवमेंट है वो है मीठा का सत्याग्रह. जैसे कि आपको मालूम है करीब 78 पीपल लेफ्ट गांधी आश्रम ऑन मार्च 1930 टू गो टू द सी शोर टू मेक द सॉल्ट ऑन देयर ओन एंड नॉट टू पे टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच हैड इम्पोज्ड टैक्स ऑन द सॉल्ट. उन्होंने क्या किया, करीब 2000 लोग जैसे मैंने कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े पहनकर लोग वहां गए. गांधी जी को अगली रात को गिरफ्तार किया गया था, ये सोच के कि यदि उनको गिरफ्तार करेंगे तो पूरी मूवमेंट खलास हो जाएगी. लेकिन उन्होंने सरोजिनी नायडू जो कि वर्ल्ड फेमस पोएटेस है उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि यदि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो क्या करना. तो ये सिंपल सी इंस्ट्रक्शन थी वो सत्याग्रही को. सबसे पहली थी कि आप 10-10 की जोड़ी में हाथ मिला के जाएंगे. दूसरा, जब आप वहां पहुंचेंगे तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय गार्ड्स, सो यू लुक देम इन देयर आईज, नॉट टू द लेफ्ट, नॉट टू द राइट, नॉट बिलो, नॉट अप, यू विल सी देम इन योर आईज. तीसरा, यू विल बी हिट विथ अ लाठी. लाठी इज नॉट ए सिंपल बैम्बू स्टिक, दिस इज अ रेजर शार्प स्टील एज एट द एंड ऑफ इट विच कैन कट ओपन योर स्कल एंड स्पाइन, बट टेक द ब्लो लाइक ए मैन. Don't even flinch when you know the blow is coming. तो 10 बंदे गए, घायल हुए, नर्सेज आई, ले गई. पूरा दिन ये रफ्तार चलती रही. वहां पर एक यूपीआई का रिपोर्टर था जिसके समाचार उस वक्त विश्व में 2200 न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे. बहुत लंबा उसने रिपोर्ट लिखा पूरे दिन की घटना का. The critical sentence was the last sentence, and it said as the following: the West has lost any moral authority to rule anyone in the world today. क्योंकि जब अंग्रेजों ने यह अखबार में पढ़ा तो उन्होंने अपने आप से यह सवाल किया, all these people want is salt, are we barbaric, we consider ourselves civilized, but look at what, how we behave, are we barbaric. और वो जो दिल पिघलने का शुरू हुआ उसके बाद 17 साल चले गए और हमें 1947 में आजादी मिली. अच्छा, हम ये लग कह सकते हैं कि भाई हम तो गांधी जी नहीं है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं. तो चलो एक बहुत ही आम उदाहरण में देना चाहता हूं. जब से मनुष्य का पृथ्वी पे जन्म हुआ है तब से सब माताएं क्या दुख सहती है, सिर्फ 9 बच्चे जन्म देने के लिए कैरी करना, जन्म देना उतना नहीं है. उसके बाद बच्चा कितना भी नटखट हो, कितना भी खराब हो, मां उसे हरदम प्यार करती है, उसे प्रेम से समझाती है. बच्चा समझता भी नहीं है कि माँ इज टेकन फॉर ग्रांटेड, वो तो वहीं पर है, कुछ भी करेगा उसको मालूम है और करेगी कि माँ तो उससे प्यार करने वाली है. माँ क्यों ये सहन करती है? माँ इसलिए सहन करती है कि उसका बच्चा या बच्ची बड़ा हो या बड़ी होकर बहुत होनहार हो और बड़ी प्रगति करे. और आमतौर पर जब तक हम मां बाप नहीं बनते हैं तब तक हमें मालूम नहीं होता है कि हमारी माता ने हमारे लिए क्या किया. तो अहिंसा जो है हमारे जीवन में हर क्षण में है, लेकिन उससे हम दूर को उसके कई कारण उसमें हम कभी और जाएंगे, लेकिन उससे हम हट जाते हैं. लेकिन समस्या या जंग मिटाने का एक ही रास्ता है और वो है कि हम खुद सहन करें. और दूसरे व्यक्ति में ये परिवर्तन लाए कि जो वो समझ रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसके दो कारण है, एक तो उसकी प्रेरणा भी ईश्वर से आ रही है तो हम उसको ईजा तो नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि उसकी भी प्रेरणा वहीं से आ रही थी। दूसरा, जब उस व्यक्ति में परिवर्तन आता है, दैट पर्सन फॉर एवर विल बी चेंज, नंबर वन। नंबर टू, द पर्सन विल रिमेन योर फ्रेंड फॉर एवर, देयर विल बी नो एनिमोसिटी, देयर आर नो ईगोज इन्वॉल्व। मैं कमजोर हूं कि मुझे मार दिया, मैंने बदल दिया, दैट इज नॉट देयर। सो अहिंसा परमो धर्म, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पुराणों में कई उदाहरण हैं। आज स्मृति जी ने कहा, उनके भजन में एक पंक्ति आई कि लाखों मंदिरों के संसार मीरा जी की, उसे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन हमने हमारे पुराणों में भी देखें तो प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई, राजा हरिश्चंद्र, किसी ने भी हिंसा की उन्होंने सहन किया, महर्षि स्वामी दयानंद ने सहन किया, बिल्कुल किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि जो स्थापक है स्वामीनारायण के पंथ, वो भी बच्चे थे, घर छोड़ के चले गए ईश्वर की खोज में। सो ये जो हम इतना समझते हैं इतना अनकॉमन नहीं है, इनफैक्ट इट इज फार मोर कॉमन देन दी, क्योंकि हिंसा वो ही करता है जो कमजोर है, क्योंकि वो जानता है सत्य उसके साथ नहीं है, और जो असत्य को बिठाने के लिए किसी पर जोर करना पड़ता है और इसीलिए हिंसा करनी पड़ती है। जो सत्य का पंथ पर है उसको तो कोई जोर करने की जरूरत नहीं, समय जरूर लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बदल जाएगा। बच्चों में भी बदलाव माता कितना प्रयत्न करती है, लेकिन या तो जब बड़ा हो जाता है या कुछ सालों के बाद समझ में आता है तो वो बदलते हैं क्या। सो ये मत एक्सपेक्ट करो कि आज किया और कल हो जाएगा, धीरज रखना बहुत जरूरी है। तो फिर हम आगे बढ़े कि पुराणों में भी हमने देखा कि इसके कई उदाहरण है, तो फिर आज के जमाने में देख लें। तो आज के जमाने में देखेंगे, सबसे पहले है अरब स्प्रिंग, जो 2011 में लाइबेरिया और इजिप्ट में हुआ। वहां ट्विटर और कई माध्यमों के द्वारा अहिंसा से शासकों को हटाया गया। उसके पहले है यूक्रेन, जहां पर कि आज भी कई हिंसा हो रही है, पर 2003 में वहां के प्रेसिडेंट ने लोकमत के विरुद्ध में अपनी सत्ता छोड़ने से मना कर दिया, तो वहां हुआ ऑरेंज रेवोल्यूशन और उनको हटाया गया। और उसके बाद है साउथ अफ्रीका की आजादी 1994, चिली देश में रेवुल और डिक्टेटर पिनोचे इन चिले, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिहाइंड द आयरन कर्टेन, सोवियत यूनियन एंड पोलैंड। और फिर और आगे बढ़ते हैं, एंड देन यू हैव सिविल राइट्स मूवमेंट हियर इन द यूनाइटेड स्टेट लेड बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनफैक्ट ही वेंट टू गांधी आश्रम टू स्टडी द टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड देन ही केम बैक एंड एम्प्लॉयड देम हियर। एंड ऑफकोर्स अपनी आजादी एंड डेनमार्क्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू ऑक्यूपेशन बाय द जर्मनी। और ये मैंने कह रहा हूं, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है अ फोर्स मोर पावरफुल। ये यहां अमरीकी फिल्म कंपनी ने बनाई है। इसमें वी हैव द एक्चुअल लाइव फुटेज ऑफ द इवेंट्स विच हैव अकर्ड, दे हैव द इंटरव्यूज ऑफ द पीपल इधर हु लेड द मूवमेंट और द एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दे आर देयर। एंड इट इज नरेटेड बाय नन अदर देन बेन किंग्सली, द पर्सन हु प्लेड गांधी इन द मूवी गांधी। एंड इट हैपेंड, जो पिछली छह घटनाएं हैं, एज इट टर्न्ड आउट द लास्ट इवेंट, सिक्स इवेंट्स, दे अकर्ड इन सिक्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग सिक्स डिफरेंट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और सो वो कौन सा उदाहरण है जिसने इस नीति का पालन किया। हम सब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। मैं जब छोटा था मैं सिर्फ यही जानता था कि गांधी जी ने आजादी दिलाई वो पॉलिटिशियन है। मुझे ये मालूम नहीं था गांधी जी एक संत भी थे, गीता के बड़े शिष्य थे। जब भी ऐसा नहीं है कि हम अपने सत्य को पालन करें इसके लिए शास्त्रों की जरूरत नहीं है, नहीं। यदि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो ये शास्त्रों की बड़ी जरूरत है। गांधी जी हरदम गीता को फॉलो करते थे और जब भी उन्हें समस्या होती थी कि क्या निर्णय लेना, तो वो गीता से मार्गदर्शन पाते थे। एंड यू हैव विथ यू अ पेज फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ओके, एंड बेसिकली इन दिस वन पैराग्राफ इज बेसिकली फॉर मी came the light as to how to lead one's life. And as you can see, he admitted he did not know the absolute truth, and that leads to the obvious conclusion: one has to live by one's own truth. However, one's truth will be different from another person's truth, so we need tolerance. And in case of a conflict where the other person's point of view is directly opposite of yours, the only way to convert that is you suffer. Okay. Now, if we can't figure out a way to suffer or to change the other, it is our weakness. It is not the weakness of the principle. क्योंकि गांधी जी से पहले किसी ने ऐसा विचार नहीं किया, भगवान ने क्यों उन्हें यह विचार दिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह उदाहरण मेरे लिए बड़ा लाभदायी हो रहा है। और फिर आगे बढ़ते हुए, so anyway, basically I have concluded, this is the conclusion basically, कि अपने सत्य पे चलो, किसी को भी पूरा सत्य मालूम नहीं है, और वो जब सत्य का पालन आप करते हैं तो पूरे दिल से अहिंसा पे रहिए, उसमें मत चुकिए, क्योंकि उसमें चुकने से हम असत्य का ग्रहण करते हैं। और आर्य समाज का नियम है कि हम सत्य ग्रहण करें और असत्य को छोड़े। अगर वो करना है तो अहिंसा का पालन करना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बड़ा अच्छा कैसे हम सत्य को धारण करके सहनशील बन सकते हैं, अहिंसा में जी सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। अहिंसा हमारे लिए बहुत प्रिय है। अहिंसा और सत्य ये हमारे जीवन के बहुत बड़े स्तंभ हैं। इनकी फाउंडेशन बना के हम अपने जीवन को बहुत आगे ऊंचा उठा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ सैटरडे संडे को योगा क्लास लगती है। योगा क्या है? योग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। उसमें सत्य को, अहिंसा को सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी हुई है, मेन इम्पोर्टेंस। अहिंसा जैसे बताया कि प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, लव फॉर ऑल बीइंग्स। और जब हम उस भाव से जीते हैं तो फिर सारे के सारे दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब दूर हो जाते हैं। तो अहिंसा से ही दुखों की समाप्ति और उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब हम अहिंसा के भाव से, सत्य के भाव से आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने 81 प्रकार की अहिंसा हिंसा बताई है। जब हिंसा को हम करते हैं, जब हिंसा को हम करवाते हैं और जब उनका अनुमोदन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो हम पाप के भागी होते हैं। तो हमारे जीवन में एक तो स्थूल ग्रोस एस्पेक्ट हिंसा के होते हैं, एक सूक्ष्म अहिंसा होती है। ग्रोस भाव में जब मैं सोचता हूं तो नॉन वेजिटेरियनिज्म है, वेजिटेरियनिज्म शाकाहारी हम बनते हैं, ये सब अहिंसा से ही आता है। तो ये हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर उस परमात्मा का मंदिर है, देवालय है, शिवालय है। तो हम इस परमात्मा को, परमात्मा के मंदिर को क्यों हम कब्रिस्तान और शमशान बनाए। तो हमें इसीलिए हम कहते हैं कि हम जीवन में कभी भी नॉन वेज ना बने, और अपने जीवन में अहिंसा के भाव को लाने के लिए, जैसे हम मैं कहता हूं कि टर्की डे पर फीड द टर्की, डोंट फीड ऑन द टर्की। तो हम जैसे अपने अपने पता है भारतवर्ष में सुबह सुबह दाना देते हैं अपने अपने पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए दाना देते हैं। तो ऐसे ऐसे आप करें, ऐसे ऐसे जीवन में आप शुरू कर दीजिए, पक्षी तो यहाँ भी होते हैं, तो उससे हमारे जीवन के अंदर अहिंसा का भाव आएगा। जैसे हम ऐसे ही क्या होता है कि आम तौर पे देखते हैं मच्छर काट जाता है, है? उसने तो थोड़ा सा डंक मारा, उसको बेचारे को मार दिया, है? पूरा कत्लेआम कर दिया, कहां उसका जीवन ले लिया एक छोटी सी उसके लिए। तो हमारी संस्कृति क्या है, जीवन दान की है, खून पान की नहीं है, और हम दूसरों को जीवन दान देते हैं, लिव एंड लेट लिव। तो ऐसे हमें शाकाहारी बनना है, शिकारी नहीं बनना है। तो आज ये हमारा मौका हुआ कि अहिंसा पे, सत्य पे, है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो हम अपने जीवन में सत्य का आचरण करेंगे, जल की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, सत्य का पालन करते रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, उससे कर्मों के अंदर हमारे शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। तो कर्म शुद्ध होंगे तो हमारा भविष्य, हमारा हमारा सब भाग्य सब ठीक रहेगा, और उसी हिसाब से हमें एक बड़े देवता का, बड़े मनुष्य का अगला जन्म मिलेगा। तो ऐसा आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, और आप इसी की बार बार सत्य की, अहिंसा की बार बार हम प्रेरणा देते रहते हैं हमारे योग क्लासेस में भी और यहाँ इस मंच से भी। तो आप सभी को निवेदन है कि हमारे योग क्लासेस में आप जरूर आइए, एवरी सैटरडे संडे 8 to 9:30। अब हमारे संजय जी आज के अनाउंसमेंट्स के लिए।